मैं विवेकानंद BA सेकेंड ईयर के लिए समाजशास्त्र पेपर 4th का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं को बतलाइए। उत्तर, सामाजिक आंदोलन समाजशास्त्र में देर से विकसित एक नवीन अवधारणा है। सामाजिक घटना के रूप में इसे काफ़ी देर से मान्यता मिली है, यद्यपि इसके संबंध में अनेक लेख मार्क्स, एंजेल, कैंटिल, डेविस आदि की कृतियों में मिलते हैं, फिर भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसका विकास नवीनतम है। पहले यह इतिहास और राजनीति शास्त्र का विषय माना जाता था, परंतु आज इस विषय से संबंधित विद्वान यह मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन का संबंध समाज की संरचना और परिवर्तन से है। भारत में सामाजिक आंदोलन के अध्ययन की शुरुआत का श्रेय एम एस राव को जाता है, जिन्होंने 1976 में विभिन्न समाजशास्त्रियों के शोध पत्रों को संपादित कर सोशल मूवमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक को 2 भागों में प्रस्तुत किया। अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक आंदोलन मूल रूप से सामूहिक व्यवहार के साथ जुड़ा होता है। समाज में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। पहला, व्यक्तिगत व्यवहार। ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जिससे दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, सामूहिक व्यवहार। ऐसा व्यवहार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में अंतःक्रिया करते हैं, इससे समाज के सभी सदस्य प्रभावित होते हैं। सामूहिक व्यवहार के अंतर्गत ही सामाजिक आंदोलन का जन्म होता है। इस प्रकार हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा गतिशील सामूहिक व्यवहार है जो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग के साथ जुड़ा हुआ है। यह परिवर्तन संपूर्ण व आंशिक भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन क्या है, इस संबंध में ब्लूमर का कहना है कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिससे जीवन की नई व्यवस्था निर्मित होती है। रुडोल्फ हेवरली ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में सोशल मूवमेंट को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन की केंद्रीय कसौटी सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी अंतर लाने की होती है। वस्तुतः सामाजिक आंदोलन किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का एक सामूहिक प्रयास है, विशेषकर यह प्रयास किसी सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने का होता है। शरीफ और शरीफ के अनुसार एक सामाजिक आंदोलन मानवीय संबंधों में अंतःक्रिया के निर्माण की अवस्था है, जो निरंतर आगे चलने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। CW King के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना है। सोशल मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स नामक अपनी पुस्तक में इस परिभाषा को इन्होंने दिया है। टच ने द सोशल साइकोलॉजी ऑफ द सोशल मूवमेंट नामक अपनी पुस्तक में सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक आंदोलन एक बहुत बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास है जो वे समाज में एक साथ अनुभव करते हैं। इसन आइजनडेट के अनुसार सामाजिक आंदोलन वह संगठन है जिसके माध्यम से राजनीतिक मांग प्रस्तुत की जाती है और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। M.S. राव ने सोशल मूवमेंट इन इंडिया में सामाजिक आंदोलन को निम्न रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक आंदोलन समाज के एक भाग द्वारा किया जाने वाला ऐसा संगठित प्रयास है जो सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में आंशिक और संपूर्ण परिवर्तन लाना चाहता है, और यह प्राप्ति किसी न किसी वैचारिकी पर आधारित होता है। लेग एवं लेग ने अपनी पुस्तक कलेक्टिव डायनामिक्स में लिखा है कि एक ऐसा निरंतर तथा विस्तृत आधार पर किया गया सामूहिक प्रयत्न जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के मूलभूत स्वरूप पर प्रभाव डालना तथा उसे एक नया स्वरूप प्रदान करना है, सामाजिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। टर्नर एवं किलियन के अनुसार जब किसी समाज व समूह में कोई सामूहिकता निरंतरता के साथ ऐसी क्रिया करती है जो समाज में विरोध व परिवर्तन को बढ़ावा देती है, तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। हल्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। कैमरान के अनुसार सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बहुत बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरी को स्थापित करने के लिए एक साथ बढ़ जाते हैं। मैकी के अनुसार सामाजिक आंदोलन जन समुदाय के सामूहिक कार्यों के द्वारा सामाजिक संरचना में जानबूझकर परिवर्तन लाने का एक चेतन प्रयास है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक गतिशील सामूहिक व्यवहार है जो सामाजिक व्यवस्था में संपूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन की मांग करता है अथवा होने वाले नवीन परिवर्तनों का विरोध करता है। जैसा कि द इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लिखा है, सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने के सामूहिक प्रयासों का एक प्रकार है। ये प्रयास इस बात के हो सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाए जाए तथा पूर्णतया नई सामाजिक व्यवस्था का सृजन किया जाए। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। अपने अध्ययनों के आधार पर एम एस राव ने सामाजिक आंदोलन की चार विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, सामूहिकता। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन के साथ जुड़ा होता है। दूसरा, चैतन्यता। जब सामाजिक आंदोलन संचालित होते हैं तब लोगों में चैतन्यता उत्पन्न होती है जिसके कारण लोग संगठित होना प्रारंभ करते हैं। तीसरा, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में परिवर्तन। जब सामूहिक क्रिया में चैतन्यता आ जाती है तो उसका लक्ष्य सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है। यह परिवर्तन संपूर्ण अथवा आंशिक दोनों हो सकता है। चौथा, वैचारिकी। राव के अनुसार हर सामाजिक आंदोलन एक विशेष वैचारिकी पर आधारित होता है। बिना वैचारिकी के कोई भी आंदोलन संचालित नहीं होता। टर्नर एवं किलियन ने भी सामाजिक आंदोलन की चार विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, एक वैचारिकी। सामाजिक आंदोलन में एक निश्चित वैचारिकी होती है। आंदोलनकर्ता उन्हीं के अनुरूप आंदोलन की रूपरेखा तय करते हैं। दूसरा, हम की भावना। व्यक्ति जब किसी भी आंदोलन के साथ जुड़ जाता है तब उसके सभी सदस्यों में हम की भावना विकसित हो जाती है। तीसरा, मानक। प्रत्येक आंदोलन के सुव्यवस्थित संचालन हेतु कुछ मानक अथवा नियम बनाए जाते हैं जिसका पालन सभी सदस्य समान रूप से करते हैं। चौथा, ढांचा। हर आंदोलन का एक निश्चित ढांचा होता है जिसके अनुसार सदस्यों के बीच श्रम विभाजन किया जाता है। रुडोल्फ हेवरली ने भी सामाजिक आंदोलन की चार विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, सामाजिक आंदोलन सामाजिक एकत्रीकरण का नमूना है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक एकत्रीकरण का एक ऐसा स्वरूप है जो संस्थागत है, जो हमेशा परिवर्तन के साथ जुड़ा होता है। सामाजिक एकत्रीकरण दो प्रकार का होता है, पहला भीड़ और दूसरा जनसामान्य। उन लोगों का एकत्रीकरण है जिसके विचारों में किसी मुद्दे पर विभिन्नताएं होते हुए भी आपस में विचार विमर्श करना चाहते हैं, जिससे सामाजिक आंदोलन उत्पन्न होता है। दूसरा, सामाजिक आंदोलन सामूहिक व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, सामाजिक आंदोलन सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ जुड़े होते हैं। चौथा, समूह की सुदृढ़ता। जब सामाजिक आंदोलन संचालित होता है तब उसके सदस्यों में समूह सुदृढ़ता अथवा समूह के पहचान की भावना पनपने लगती है। पार्थ मुखर्जी ने भी सामाजिक आंदोलन की पांच विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, सामाजिक ढांचे के साथ संबंध। सामाजिक आंदोलन का संबंध सामाजिक ढांचे के साथ होता है क्योंकि सामाजिक आंदोलन हमेशा सामाजिक ढांचे में ही परिवर्तन की बात करता है। दूसरा, निश्चित दशाएं। सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे विशिष्ट परिस्थितियों का हाथ होता है। तीसरा, प्रमाद एवं परिणाम। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का प्रभाव एवं परिणाम सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। चौथा, प्रतीकात्मक व्यवस्था। कोई भी सामाजिक आंदोलन झंडा अथवा कोई और चिन्ह को प्रतीक के रूप में अपनाता है जिसके कारण उसकी पृथक पहचान बनती है। पांचवा, सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक आंदोलन की विशेषता के संबंध में उपर्युक्त विद्वानों ने जो अवधारणा प्रस्तुत की है उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक आंदोलन की निम्न विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। पहला, सामाजिक आंदोलन संगठन बनाकर किया जाता है अथवा सामाजिक आंदोलन की विषय वस्तु सामूहिक व्यवहार है। दूसरा, इन्हें भौगोलिक आधार पर पहचाना जा सकता है, जैसे तेलंगाना आंदोलन। तीसरा, सामाजिक आंदोलन जैसे टेरर की मान्यता है काफी समय तक चलते रहते हैं, जैसे किसान आंदोलन। चौथा, किसी भी सामाजिक आंदोलन में वैचारिकी के विशिष्ट प्रतिमान निहित होते हैं। पांचवा, किसी भी सामाजिक आंदोलन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। छठवा, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे कुछ संकट समस्या अथवा विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं। सातवा, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन के अपने कुछ मानक अथवा नियम होते हैं। आठवा, आंदोलन करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना पाई जाती है। नौवां, सामाजिक आंदोलन का एक निश्चित ढांचा होता है। दसवां, सबसे पहले जब सामाजिक आंदोलन शुरू होता है तो उसे समाज विरोधी अथवा अवैध घोषित कर दिया जाता है। ग्यारहवां, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का निर्माण नहीं होता बल्कि उसका विकास होता है। बारहवां, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का अपना कोई प्रतीक होता है। तेरहवां, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन के पीछे चैतन्यता अथवा जागरूकता का विशेष हाथ होता है। चौदहवां, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के तुलनात्मक अभाव बोध सिद्धांत की व्याख्या करें। उत्तर, जब हम किसी भी सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हैं, उसके लक्षण देते हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि सामाजिक आंदोलन के कारण क्या हैं, आंदोलन होते क्यों हैं, सामाजिक संरचना में कौन सी दशा होती है जो सामाजिक आंदोलन को जन्म देती है इत्यादि। हम जानते हैं कि सामाजिक आंदोलन बहुत सारे लोगों द्वारा सामान्य समस्या अथवा समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाने का एक चेतन प्रयास होता है, और ऐसा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि लोग उस समस्या को समझें, उसके प्रति जागरूक हों। इसका अर्थ यह है कि समस्याएं लोगों द्वारा शून्य से पैदा नहीं की जाती, वे यथार्थ में विद्यमान रहती हैं, लेकिन लोग उसे सुलझाने का साधन तभी ढूंढते हैं जब वे किसी समस्या को वास्तव में समझने लगते। सापेक्षिक वंचन सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी चीज को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो इसे सापेक्षिक वंचन कहते हैं। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि किस प्रकार से समाज के एक बहुत बड़े हिस्से लोग अपनी आवश्यकताओं और मांगों से वंचित रह जाते हैं जबकि दूसरे लोग नहीं, तो ऐसी स्थिति में ही सामाजिक आंदोलन का उद्भव होता है। सामाजिक विज्ञानों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अनेक तरीके अपनाए गए हैं। किसी ने व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर उसका अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों से क्या संबंध है यह ध्यान में रखकर अपनी अवधारणा विकसित की है, तो कुछ विचारकों ने स्वयं समाज को केंद्र बिंदु मानकर व्यक्ति को एक अंग की संज्ञा देकर संपूर्ण समाज के संदर्भ में उसके व्यवहार को समझने का प्रयास किया है। आर के मर्टन ऐसे ही समाजशास्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने संदर्भ समूह नाम से एक सिद्धांत हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। निश्चय ही हम सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत को उसके मूल रूप में 1949 में प्रकाशित पुस्तक अमेरिकन सोल्जर में देख सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के तुरंत बाद मर्टन ने इसकी तथ्य सामग्री के आधार पर ही 1950 ईस्वी में सापेक्षिक वंचना के सिद्धांत को रखा। यह मर्टन ही थे जिन्होंने इस तथ्य सामग्री का प्रयोग व्यवस्थित रूप से अपने संदर्भ समूह सिद्धांत के निर्माण में किया। संदर्भ समूह सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस समूह का वास्तव में सदस्य होता है और जिस समूह को अपना मानकर उसकी प्रकारियों में सक्रिय भाग लेता है उसे सदस्य समूह कहते हैं, परंतु व्यवहारिक तौर पर ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तौर पर अपना संबंध ऐसे समूह से भी बनाए रखता है और उसके मूल्यों और आदर्शों को अपने आचरण में सम्मिलित करता है जिसका कि वह वास्तव में सदस्य नहीं होता। ऐसे समूह को ही मर्टन संदर्भ समूह कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या करने में तुलनात्मक अभावबोध को ही अपना मुख्य आधार बनाया है। तुलनात्मक अभावबोध का अर्थ है किसी समूह के सदस्य अपनी सामाजिक दशाओं की तुलना अन्य समूहों से करते हैं और जब अपने आप को अभावग्रस्त पाते हैं तब वह अभावबोध से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे लोगों और समूहों के संदर्भ में जब कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी वस्तु को प्राप्त करने में वंचित हो जाता है तो यही सापेक्षिक वंचन या तुलनात्मक अभावबोध है। यह सिद्धांत इस बात की तरफ संकेत करता है कि जब समाज अथवा समूह के एक भाग के सदस्य सापेक्षिक रूप से अपने आप को वंचित पाते हैं तब वे संगठित होकर किसी न किसी आंदोलन को जन्म देते हैं। वर्तमान परिदृश्य में नक्सलवाड़ी आंदोलन को इससे एक ऐसे ही आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। किसानों ने यह अनुभव किया कि उनका शोषण किया जा रहा है तथा उन्हें उनके अधिकारों और श्रम के फल से वंचित किया जा रहा है, अतः उन्होंने विरोध करने का निश्चय किया। इस संदर्भ में अमेरिकन सैनिकों का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। इस संबंध में मर्टन ने अपनी पुस्तक कंटिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, जो कि 1950 में प्रकाशित हुई, में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है। इस संदर्भ में कि सामाजिक आंदोलन क्यों और कैसे होता है, अनेक विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। ऐसे ही एक विद्वान स्टाउफर का कहना है कि ऐसे समूह जो अन्य समूहों की तुलना में अपने आप को अभावग्रस्त देखते हैं, वे समूह तुलनात्मक अभाव बोध से पीड़ित हो जाते हैं। अपने अभावों को दूर करने के लिए उच्च सामाजिक समूहों में, जो कि उनका संदर्भ समूह है, वे जाना चाहते हैं और इसमें जाने के लिए ही वे अब सामाजिक आंदोलन का तरीका अपनाते हैं। इस संबंध में मार्क्स तथा क्लिनार्ड का कहना है कि शोषित वर्गों में इस सिद्धांत को विशेष रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। शोषित वर्ग समाज के उच्च वर्गों की तुलना में अपने आप को अभाव में पाता है, असंतुष्ट रहता है। इस अभाव का कारण वह उच्च वर्ग को मानता है और इस प्रकार यह शोषित मजदूर किसान वर्ग समाज में उच्च वर्ग के द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष करता है। हिबरली तथा कोबर ने सामाजिक आंदोलन की व्याख्या निम्न रूपों में किया है। अभाव बोध उन समूहों में पैदा होता है जो अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में स्वयं को मौलिक संपत्ति और योग्यता के संबंध में अभावग्रस्त पाते हैं। अतः ये समूह आंदोलन के द्वारा अपनी कमियों को पूरा करने के लिए सामूहिक क्रिया करते हैं, ताकि वे अन्य समूहों के समकक्ष हो जाएं। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलन इसलिए प्रारंभ होता है क्योंकि लोग कुछ बातों के बारे में अप्रसन्न होते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पर्याप्त नहीं मिल रहा है। दूसरे शब्दों में वे सोचते हैं कि अगर कोई वस्तु उस व्यक्ति अथवा समूह के पास है अथवा उनको कोई विशेष लाभ मिल रहा है तो मुझको क्यों नहीं। और फिर जब ऐसी ही विचारधारा से ग्रसित दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो उनमें विचारों का आदान प्रदान होता है। फलस्वरूप एक सम्मिलित वैचारिकी का निर्माण होता है जो उन लोगों को विरोध अथवा आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक आंदोलन के विश्लेषण में एक प्रमुख सिद्धांत होने के बावजूद समाज वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी की है। नील स्मेल्सर तथा बैलेस का कहना है कि सिर्फ सामाजिक वंचना से ही सामाजिक आंदोलन की शुरुआत नहीं होती। कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो सामाजिक आंदोलन के लिए उत्तरदायी हैं। स्मेल्सर सामाजिक आंदोलन के लिए संरचनात्मक तनाव को उत्तरदायी मानते हैं, जबकि बैलेस का कहना है कि लोग अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए भी सामाजिक आंदोलन करते हैं। मार्क्स तथा एबरले ने तो इस सिद्धांत के विरोध में संघर्ष सिद्धांत को रखा। दोनों का कहना है कि व्यक्ति कभी भी अपने आप में यथा स्थिति से असंतुष्ट नहीं होते। जैसे हमारे देश में दलित अथवा शूद्र अपनी स्थिति से संतुष्ट थे, उन्हें यह समझा दिया गया था कि उनकी यह स्थिति ईश्वर ने बनाई है। इस प्रकार दोनों इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सापेक्षिक वंचना से संघर्ष होता है, लेकिन वे यह आवश्यक रूप से मानते हैं कि सापेक्षिक वंचना उन्हें लंबी अवधि में ले जाकर संघर्ष की ओर ले जाती है। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सापेक्षिक वंचना किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण कारक है और आज तक जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं, चाहे वह भारत में हो या विश्व में, उनकी मूल जड़ों में सापेक्षिक वंचना अवश्य ही समाहित रही है। परंतु हमारा ये कहना अवश्य ही अतार्किक हो सकता है कि सामाजिक आंदोलन सापेक्षिक वंचना के ही कारण उत्पन्न होता है। सामाजिक आंदोलन के उत्पत्ति के अन्य कारक भी हो सकते हैं। MSA राव का यह कथन सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है कि सामाजिक आंदोलन के लिए सामाजिक संरचना में कुछ दशाएं होती हैं। इन दशाओं में सापेक्षिक वंचना भी होती है। अब हम एक तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक तनाव सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, सामाजिक आंदोलन के तनाव सिद्धांत के प्रणेता अमेरिकी समाजशास्त्री नील स्मेल्सर हैं, जिन्होंने 1962 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति की व्याख्या की। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना में कुछ ऐसे मानदंड, मूल्य और व्यवहार प्रतिमान आ जाते हैं जो संरचना के कुछ भागों या व्यक्तियों में तनाव पैदा कर देते हैं। यह संरचनात्मक तनाव जब केंद्रित हो जाता है तब इसकी परिणति आंदोलन के रूप देखने को मिलती है। तनाव सिद्धांत सामान्यतः उन समाजों पर लागू होता है जो या तो सामाजिक परिवर्तन के संक्रमण काल में हैं या तो आधुनिकीकरण की सीमा को लांघने वाले हैं। यूरोप के देश आज तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तनाव शब्द मुख्यतः शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान की एक प्रमुख अवधारणा है। शरीर विज्ञान में तनाव से तात्पर्य उस दबाव से है जो स्नायुओं के सिकुड़ने से उत्पन्न होते हैं तथा जिसके कारण मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। मनोविज्ञान में तनाव से तात्पर्य व्यक्ति में दबाव की उस स्थिति से है जिसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रेरकों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। व्यक्ति में तनाव तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु की आवश्यकता जागृत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज मूल्यों, आदर्शों, शक्ति, सत्ता, पद, परंपराओं और मान्यताओं की एक व्यवस्था है। जब तक समाज के ये अंग एक दूसरे से अंतर्संबंधित होते हैं और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हैं तब तक सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहता है। परंतु जब ये अंग अथवा संस्थाएं अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं तब ये दुष्प्रकार्य करने लगते हैं। इस विकृति को ही संरचनात्मक तनाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारतीय समाज को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में धर्म, परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था आदि कुछ मूल्यों, मान्यताओं और नियमों पर आधारित होते हैं। जब तक ये मूल्य और मान्यताएं सुचारू रूप से कार्य करते हैं तब तक सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। परंतु जब ये सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं अथवा अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं तब अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता इत्यादि। इन समस्याओं के निराकरण के लिए भारत में अनेकों सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में चला आंदोलन, अम्बेडकर जी के नेतृत्व में अस्पृश्यता के अंत के लिए चलाया गया महाआंदोलन। ये सभी आंदोलन भारतीय समाज की संरचना में व्याप्त तनाव के ही कारण पैदा हुए। पार्सन्स के अनुसार समाज के क्रियात्मक संतुलन में कमी या गड़बड़ी से सामाजिक तनाव पैदा होते हैं। सामाजिक तनाव के बारे में लेवी स्ट्रास का कहना है कि सामाजिक तनाव के बारे में लेवी स्ट्रास का कहना है कि आधुनिक समाज में कार्य की दमन का बढ़ता महत्व सामाजिक तनाव के बारे में लेवी स्ट्रास का कहना है कि आधुनिक समाज में कार्य की दशा तथा आर्थिक जीवन का बढ़ता महत्व व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करता है। जीवन की परिस्थितियां अनुकूलन की मांग करती हैं। जब अनुकूलन नहीं मिलता है या अपर्याप्त मात्रा में मिलता है तभी तनाव पैदा होता है। कुर्ट लेविन का कहना है कि समूहों के मध्य तनाव की उत्पत्ति विरोधी विचारों, प्रेरकों अथवा मूल्यों के कारण उत्पन्न होती है। तनाव समूहों के मध्य असंतुलन उत्पन्न करती है। सामाजिक तनाव के संबंध में मार्क्स का कहना है कि जब समाज में परस्पर हितों में टकराहट होती है तब सामाजिक संरचना में तनाव पैदा होता है। जैसे अमेरिकी समाज में प्रजातीय विभिन्नता के आधार पर पाई जाने वाली विषमता ने वहां तनाव को जन्म दिया, जिसके कारण निग्रो और श्वेतों में संघर्ष हुआ और निग्रो ने नागरिक अधिकारों का सामाजिक आंदोलन चलाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रचलित मूल्य व्यवस्था और प्रतिमानों की व्यवस्था लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं करती तो समाज में तनाव उत्पन्न होता है। इस समय में पुरानी मूल्य व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई मूल्य व्यवस्था खोजी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष एवं तनाव होते हैं। प्रायः ऐसी स्थितियों में लोग सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जहां अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं है, वहां फिर से इन प्रतिमानों का उल्लंघन कर इस तरह के विवाह होते हैं। स्मेल्सर का कहना है कि तनाव से चिंताएं व अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। जो लोग इस तनाव से ग्रस्त होते हैं वे लोग अपनी परिस्थितियों का आकलन करते हैं और जब अपनी परिस्थितियों को तनावपूर्ण और असुविधाजनक अनुभव करते हैं तो उनके अंदर परिस्थितियों के विषय में एक ही प्रकार के मतों का निर्माण होता है। और जब एक ही समान मत रखने वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनमें विचारों का आदान प्रदान होता है, फलस्वरूप एक सामूहिकता का निर्माण होता है और फिर वही सामूहिकता सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए सामूहिक क्रिया या आंदोलन करती है। सामाजिक आंदोलन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होने के बावजूद संरचनात्मक तनाव सिद्धांत की कुछ गंभीर आलोचनाएं भी की गई हैं। इस सिद्धांत की आलोचना करने वाले विद्वानों में मर्टन, बैलेस, मार्क्स तथा स्टाउफर प्रमुख हैं। मर्टन सामाजिक आंदोलन का कारण अभावबोध को मानते हैं। स्टाउफर का कहना है कि वे समूह जो अन्य समूहों की तुलना में अपने को अभाव में देखते हैं वे अभाव से पीड़ित हो जाते हैं और इस अभाव को दूर करने के लिए वे सामूहिक क्रिया व आंदोलन करते हैं। मार्सन महोदय का मानना है कि सामाजिक आंदोलन सिर्फ सामूहिक अभावबोधों या संरचनात्मक तनाव के ही कारण उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे कुछ महत्वपूर्ण दशाओं का भी हाथ होता है। निश्चय ही मार्सन जी के विचारों के साथ कुछ सहमति व्यक्त की जा सकती है। इसी प्रकार एक और प्रमुख आलोचक बैलेंस महोदय का कहना है कि तनाव सिद्धांत आंदोलन के नकारात्मक पक्ष को व्यक्त करता है, जबकि आंदोलन का सकारात्मक पक्ष भी होता है। लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए भी आंदोलन करते हैं। अब हम एक दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन का पुनर्जीवीकरण सिद्धांत की व्याख्या करें। सामाजिक आंदोलन क्यों होता है, इसकी व्याख्या तुलनात्मक अभावबोध एवं संरचनात्मक तनाव सिद्धांत की दृष्टि से प्रारंभ होता है, जिसे नकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जब समाज के सदस्य परिस्थितियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं या वे नकारात्मक संरचनाओं से पीड़ित होते हैं तो वे सामाजिक आंदोलन करते हैं। दूसरे शब्दों में अभाव बोधों या तनाव के शिकार होने पर लोग आंदोलन करते हैं। वहीं पर अमेरिकन समाजशास्त्री वैलेस का कहना है कि सामाजिक आंदोलन का कारण लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वैलेस के अनुसार जब लोग अपने लिए अधिक संतोषजनक संस्कृति चाहते हैं तो इसके लिए संयुक्त प्रयास करते हैं और सामाजिक संगठित करते हैं। लोगों की यह इच्छा होती है कि वे अच्छी स्थिति प्राप्त करें, ऐसी स्थिति जो उन्हें संतोष दे सके, इसके लिए वे सामाजिक आंदोलन करते हैं। वैलेस सामाजिक आंदोलन को पुनर्जीवीकरण का एक अवस्था मानते हैं जो चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला, सांस्कृतिक स्थिरता की अवधि। दूसरा, व्यक्ति तनाव वृद्धि की अवधि। तीसरा, सांस्कृतिक विकृति एवं मोह भंग की अवधि। और चौथा, पुनर्जीवीकरण की अवधि। बैलेंस की मान्यता है कि किसी समूह के संस्कृति में स्थिरता रहने पर समूह के सदस्यों में तनाव बढ़ जाता है, उसके संस्कृति विकृत होने लगती है। इस विकृति के कारण लोगों का उस संस्कृति से मोह भंग हो जाता है और आंदोलन की अवस्था उत्पन्न होती है, जिसका लक्ष्य होता है गिरती हुई संस्कृति को जीवित करना, उनमें नई संभावनाएं पैदा करना। लोग सामूहिक क्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति को जीवित करते हैं और अधिक संतोष की स्थिति प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलन का एक सकारात्मक योजनाबद्ध क्रिया है, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाया जाता है। इस प्रकार वैलेस के सिद्धांत से एक सकारात्मक सिद्धांत हमें प्राप्त होता है, एक सकारात्मक कार्यक्रम आधारित होता है, जिसमें दो तरह से कार्य होता है। एक ओर लोग अपनी वर्तमान दशाओं से विरोध या असंतोष प्रकट करते हैं और दूसरी तरफ अपनी वर्तमान दशाओं में सुधार के लिए कुछ सकारात्मक उपाय करते हैं। इस प्रकार अधिक संतोषजनक संस्कृति के निर्माण के लिए समाज के सदस्यों द्वारा जानबूझकर संगठित तथा जागरूक प्रयास किए जाते हैं। आंदोलन में भाग लेने वालों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी संस्कृति को सोचें, समझें और अनुभव करें कि उनकी संस्कृति संतोषप्रद नहीं है, और एक नई व्यवस्था की खोज जिसमें नए संबंधों को स्पष्ट किया गया हो। अतः इस सिद्धांत के अनुसार दो दशाएं होती है। पहली, समाज के सदस्य अत्यधिक दबाव का अनुभव करते हैं। दूसरा, विकृत संस्कृति के प्रति उनका गहन असंतोष पैदा हो जाता है और मौजूदा परिस्थितियों से असंतोष के कारण सामूहिक क्रिया एवं आंदोलन के द्वारा परिस्थितियों को सुधारा जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों के लिए एक दूसरे प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ, जो कि सामाजिक आंदोलन की अवधारणा नामक चैप्टर से ही संबंधित है। प्रश्न का नाम है, सामाजिक आंदोलन के जीवन चक्र को रेखांकित करें। उत्तर, जब भी कोई सामाजिक आंदोलन प्रारंभ होता है तो वह आकस्मिक ही प्रारंभ नहीं होता, बल्कि वह अनेक चरणों से गुजरने के पश्चात ही एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है। जब समाज के अधिकांश लोग यह महसूस करने लगते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में असमानता, अन्याय, शोषण रूपी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जो हमारी खुशहाली एवं अच्छे भविष्य के मार्ग में बाधक हैं, तब वे इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए तथा इनके स्थान पर कुछ नए मूल्यों को स्थापित करने के लिए एकजुट होकर सामाजिक आंदोलन को जन्म देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन अपने उद्भव से लेकर समापन तक के काल तक अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसे उस आंदोलन का जीवन चक्र कहते हैं। प्राय हमें यह देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन जिनका उद्देश्य एवं प्रकृति अलग अलग है, कुछ ऐसी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं जो लगभग सभी आंदोलनों में एक समान होता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रायः सभी आंदोलन अपने उद्भव से लेकर समापन के काल तक कुछ निश्चित अवस्थाओं से होकर ही गुजरते हैं। जैसा कि हल्टन एवं हंट का कहना है, यद्यपि कोई भी दो आंदोलन बिल्कुल एक से नहीं होते हैं, तथापि विभिन्न आंदोलन बहुत कुछ एक समान ही प्रकट करते हैं। डासन एवं गेटिस ने सामाजिक आंदोलन के निम्न चरणों का उल्लेख किया है। पहला, सामाजिक असंतोष की अवस्था। दूसरा, लोक उत्तेजना का चरण। तीसरा, औपचारिक संगठन। चौथा, संस्थाकरण। जबकि मर्टन ने ऐसी पांच अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनसे होकर कोई सामाजिक आंदोलन गुजरता है। पहली, सामाजिक असंतोष। दूसरा, लोक उत्तेजना का चरण। तीसरा, औपचारिक संगठन। चौथा, संस्थानीकरण। पांचवा, समापन की अवस्था। अब हम इसका विस्तारपूर्ण विवेचन करेंगे। पहला, सामाजिक असंतोष। डासन एवं गेटिस के अनुसार किसी भी आंदोलन की उत्पत्ति का यह पहला चरण है, जब सामाजिक व्यवस्था लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है और जब लोगों को अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होने लगती है, तब लोगों में सामाजिक असंतोष पनपता है, तब वे एकजुट होकर आंदोलन के लिए अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा, लोक आंदोलन का चरण। यह सामाजिक आंदोलन का द्वितीय चरण है। किसी भी आंदोलन के उद्भव के पहले लोगों में सामाजिक असंतोष की भावना का उद्भव होता है और इस असंतोष की भावना की समाप्ति के लिए लोग किसी न किसी मार्ग को खोजने का प्रयत्न करते हैं और इसी क्रम में कुछ विशिष्ट सामाजिक स्थितियों को विपत्ति के मूल कारण के रूप में पहचान लिया जाता है तथा उत्तेजना प्रारंभ हो जाती है। इसी अवस्था में आंदोलन को नेतृत्व तथा मार्गदर्शन एवं विचारधारा मिलने लगती है जो असंतोष के विरुद्ध लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर देती है और चारों तरफ उत्तेजना व आक्रोश का वातावरण उमड़ने लगता है और लोगों में असंतोष के विरुद्ध नवीन उत्साह का संचार होने लगता है। प्रायः इस अवस्था का काल संक्षिप्त होता है तथा शीघ्र ही क्रिया में बदल जाता है। दूसरा, औपचारिक संगठन। जब सामाजिक असंतोष व लोक उत्तेजना पनपनी शुरू होती है तो आंदोलनकारियों को निर्देशित करने के लिए एक औपचारिक संगठन का निर्माण किया जाता है तथा उस संगठन के संचालन के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इस तरह इस संगठन में दो स्तर बन जाते हैं, नेतृत्व तथा कार्यकर्ता, और दोनों के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है जो साथ मिलकर सामाजिक आंदोलन को संचालित करते हैं। साथ ही साथ जनता या किसी और स्रोत से चंदा या कोष और अधिक सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाने लगता है। वह विचारधारा पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट हो जाती है। नेतागण विचारधारा को स्पष्ट करते जिसके अंतर्गत वे लोगों को उनके साझे असंतोष का स्मरण कराते हैं, विरोधियों को पहचानने का कार्य करते हैं तथा आंदोलन के उद्देश्य बताते हैं, विरोध व क्रिया के लिए दांव पेच बनाए जाते हैं तथा अपने आंदोलन के लिए उठाए गए कदमों के लिए एक नैतिक औचित्य स्थापित किया जाता है। संस्थानीकरण। किसी आंदोलन की चतुर्थ अवस्था संस्थानीकरण की होती है। इस अवस्था में नियम बनते हैं, परंपराएं निर्मित होती है, एक लंबे समय तक चलने के कारण सामाजिक आंदोलन का निश्चित स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आंदोलनकारियों का स्थान कुशल नौकरशाह ले लेते हैं और एक प्रकार से संस्थानीकरण का स्वरूप उभर कर सामने आने लगता है, जैसे नियम, भवन, संविधान अथवा प्रतीक आदि बन जाते हैं। जब आंदोलन अपने लक्ष्यों में सफल हो जाते हैं और जिन लोगों के हितों की पूर्ति इस आंदोलन के माध्यम से होती है वे उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप आंदोलन के उद्देश्यों को समाज में मान्यता मिल जाती है, यह काल अनिश्चित समय तक चल सकता है। पांचवा, समापन की अवस्था। किसी भी आंदोलन की पंचम अवस्था आंदोलन भंग करने की अवस्था है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे समय के विभिन्न मोड़ पर विभिन्न आंदोलन भिन्न भिन्न परिणाम पर पहुंचकर समाप्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ आंदोलन तो पूर्ण विकसित भी नहीं हो पाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कभी कभी किसी आंदोलन के नेताओं के मध्य मतभेद होने के कारण आंदोलन में विभाजन हो जाता है, जैसे नक्सलवाड़ी आंदोलन से उत्पन्न CPM तथा CPI। इन विभाजित समूहों में भी अपनी अपनी विचारधारा व क्रिया का कार्यक्रम होता है। केवल थोड़े ही आंदोलन पूर्ण स्थानीयकरण प्राप्त कर पाते हैं। समाप्त होता है ये क्वेश्चन।